नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सर्वसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सर्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सर्वेऽस्मिन् प्रथमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की आराधना सार ग्रंथ की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की विमलयर गुण समिद्धं सिद्धं सुरसेन वंदियं सिरसा नमियूण महावीरं वोच्छं आराहणासारं भावनाय जुक्तो अवगणीय देह दुख संघायम जीवो देहाउतुमं कड्ड सुख गुप्पकोसाउ तलवार को म्यान से जिस प्रकार बाहर निकालते हैं वैसे हे क्षपक तुम शरीर के दुख समूह को इन भावनाओं से युक्त होकर अवगणित कर दो, माने उन पर ध्यान न दो, दुखों पर ध्यान देना छोड़ दो और जीव को शरीर से पृथक कर लो, यानी शरीरातीत बना लो। तलवार को म्यान से निकालते हैं, वैसे जीव को तुम शरीर से निकाल लो। यह दुख तुम कहा भी है, शरीर तक कर तुम अनंत शक्ति विभिन्न आत्मानम पास्त दोषम जिनेन्द्र कोशादिव खड्ग यष्टिम तव प्रसादेन ममासु शक्ति। हे जिनेन्द्र, आपकी कृपा से मेरे पास वो शक्ति हो कि अनंत शक्तिमान शुद्ध आत्मा को अपने शरीर से मैं म्यान से तलवार की भांति पृथक कर सकूं। पुनः शिक्षां प्रयच्छन्ना, फिर आचार्य महाराज क्षपक को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, अण्यून अट्ट रुद्धे अप्पा परम अप्पयम मिठवियून भावे सहाउ जीवु कट्ट सुदेहाउ मलमुत्तु। आर्त और रौद्र ध्यान का विनाश करो, करके आत्मा को परमात्म पद में स्थापित करके अपने स्वभाव को भावित करने वाला जीव देहाओ मलमुत्तो कड्ढस, अपने शरीर से निर्मल आत्मा को बाहर निकाल लो। ये कड्ढस शब्द जो है ना, प्राकृत भाषा का शब्द है और इसी से गुजराती में भी एक शब्द बनता है, काढ़ी नाखो। काढ़ने का मतलब क्या होता है गुजराती? निकालना। बस वही बात यहाँ प्राकृत से ये चीज यहाँ चली आई है। तो हर प्रांत में संस्कृत प्राकृत के कोई ना कोई शब्द वहां की प्रांतीय भाषा में शामिल होते हैं। बंगाली भाषा में बहुत सारे संस्कृत शब्द आते हैं, कर्नाटक की भाषा में, फिर गुजराती में और अन्य अन्य अनेक प्रकार की भाषाओं में, महाराष्ट्र की भाषा में भी बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। बुंदेलखंडी तक में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा से चले आए हैं। जैसे गर्मी होती है, जब बहुत ज़्यादा धरती तप जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंडी में नौ तपा तो कोई बुंदेलखंडी शब्द नहीं है, ततूरी बोलते हैं, ततूरी बोलते ना। तो ततूरी का अर्थ होता है तप्त उर्वी, संस्कृत भाषा में तप्ता चासव उर्वी छ इति ततूरी तप्तोर्वी। अब तप्तोर्वी मतलब तपी हुई उर्वी यानी धर्मी धरती, तो वो तप्तोर्वी का ततूरी बन गया। ऐसे बहुत सारे शब्द अंग्रेजी भाषा में भी कुछ संस्कृत के शब्द चले गए। जैसे स्माइल है तो स्मिंग धातु होती है संस्कृत भाषा में, उसका अर्थ होता है ईशक हंसने, मुस्कराना, तो अंग्रेजी में उसको स्माइल बोलते हैं। संस्कृत में जिसको द्वार कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डोर बोलते हैं। अब देखिए, आप तुलना करके देखिए कि कितना ज़्यादा फर्क है। बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, द्वार डोर स्मिंग स्माइल, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो सब भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत के कुछ अंश गए हुए हैं। ये कड्डसु जो शब्द है ना, काढ़ी नाको, वही उसका तात्पर्य है कि आर्त रौद्र ध्यान को नष्ट करके परमात्म पद में अपनी आत्मा को स्थित करके स्वभाव को भावित करने वाले हे निर्मल जीव, तू शरीर से अपनी आत्मा को पृथक कर ले, यानी अपनी आत्मा को देहातीत बना ले। अभी तो अपन शरीर में निवास कर, शरीर अपना घर है, अपन शरीर नहीं है। जैसे आप अपने घर पर रहते हैं तो आप अपना घर को अपना रूप मानते हो क्या? घर के अंदर आप आ गए, आप बोलो कि ये मैं हूं, ऐसा होता है तुम? नहीं, वो घर अलग वस्तु है और आप अलग वस्तु है। इसी प्रकार अभी अपनी जो आत्मा है, अपना जो जीव है, वो इस शरीर में निवास कर रहा है। ये शरीर उसका टेम्पररी घर है। टेम्पररी घर का मतलब, जब टेम्पररी घर का मतलब होता है जिसमें किराया देकर जब तक रह रहा हो तब तक रहने मिलेगा, और किराया खत्म हो गया आयु का, तो यहाँ पर फिर वैसी छूट नहीं मिलती। जैसे मान लो किराएदार ने किराया नहीं दिया तो मकान मालिक कहता है कि ठीक है 3 दिन की तुम्हें मोहलत देते हैं, तो यहाँ पर आयु रूपी किराया देना आप जिस दिन बंद कर दो तो आपको 3 सेकंड की मोहलत नहीं मिलने वाली। वो तो तत्काल हिसाब किताब चुकता हो जाता है, जैसे बंद हुआ काम बाहर जीव को छोड़ना पड़ता है शरीर। तो कट्ट सुदेहा उमल मुत्तु, तो इस शरीर रूपी पिंजरे से तुम बाहर निकल जाओ, अपने जीव को इससे बाहर काट लो, कड्डस निकाल लो। समाधि तंत्र का एक श्लोक उद्धरण के रूप में इसमें टीकाकार रत्नकीर्ति आचार्य दे रहे हैं। सोहमित्यात् संस्कारस् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्काराल लभते यात्मनिस्थितिम्। बस वो परमात्म पद का ध्यान लगाकर, ध्यान लगाते लगाते ऐसी एक रूपता आ जाए, ऐसी तन्मयता आ जाए कि बस वही तो मैं हूं, वो स्थिति बन जाए। सो हम, सो हम, बिल्कुल निराकुल शांत पूर्ण ज्ञान दर्शन स्वरूप निर्मल चेतना से संपन्न जो परमात्मा है वही मैं हूं। क्या फर्क है ये तो अपन अच्छे से जानते हैं, उनमें और अपने में जो फर्क है, जो अंतर है वो तो स्पष्ट है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाने के पहले उस पत्थर के अंदर एक आकार अपनी कल्पना से गढ़ लेता है, फिर बाद में उसी आकार को वो प्रकट करता है। बात समझ में आई? तो परमात्मा को देख करके अपने अंदर उस स्वरूप पर दृष्टि डालना है। अभी रूप और स्वरूप में फर्क है। परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? परमात्मा रूप और स्वरूप दोनों से एक है, और आत्मा स्वरूप से परमात्मा रूप है और रूप से संसारी है। तो जब रूप और स्वरूप एक हो जाए तब वो परमात्मा पद होता है। तो उसको पहले देख लो अपने अंदर, और इसके लिए प्रवचन सार ग्रंथ में 80 नंबर जो गाथा आती है 80 नंबर की, उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखा है कि अरहंत खलु पाक काष्ठागत शुद्ध कार्तस्वर सेव परिशुद्ध आत्मस्वरूप। अरहंत भगवान वास्तव में पके हुए शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल स्वरूपी हैं। यो ही नाम अरहंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययत्व ही परिच्छिन्नति स आत्मानमपि परिच्छिन्नति उभयोरपि निश्चयेना विशेषात्। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। जो महान अनुभवी होते हैं साधक, उनके शब्द भी निराले होते हैं। वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं और सरल भाषा में बड़े गहन रहस्य को भी प्रकट कर डालते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि जो द्रव्यत्व गुणत्व और पर्ययत्व से अरहंत परमेष्ठी को जान लेता है वो अपने आप को पहचान लेता है। और ये पहले भी हम कह चुके हैं कि दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। तो अरहंत को कैसे जानने की चर्चा है यहाँ, द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से। अब आपने 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह याद कर लिए और आपको रंग भी मालूम है कि कौन से भगवान का कौन सा रंग था, तो इतना ज्ञान अरहंत की पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है। अरहंत भगवान की जो पहचान होगी उसमें द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, इन तीन अपेक्षाओं को लेकर जानना पड़ेगा। इसीलिए फिर आचार्य महाराज ने प्रवचन सार की 80वीं गाथा के कुछ गाथाओं के बाद एक और गाथा दे दी। बोले मोह नष्ट करने का उपाय क्या है? एक उपाय तो ये है कि अरहंत भगवान को पहचानो और अपनी आत्मा को पहचान लो, मोह नष्ट हो जाएगा। और दूसरा उपाय क्या बताया कि इस उपाय को प्राप्त करने के लिए जिन वाणी का स्वाध्याय करो, क्योंकि ये जो पहला उपाय है वो स्वाध्याय की अपेक्षा रखता है, क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व इसको इन्हें गिने लोग ही जानते हैं कि क्या बात है। द्रव्य, गुण, पर्याय की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन गाथा में जो उल्लेख है, जिन शब्दों में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बात प्रकट की है, उन शब्दों को अगर देखें तो उन्होंने दब्ब गुण पज्जय ही नहीं लिखा, दब्बत्त गुणत्त पज्जयत्ते ही। आप समझ रहे हैं कि नहीं, भारी तो नहीं पड़ रहा, बहुत सरल भाषा है, प्राकृत भाषा संस्कृत जैसे क्लिष्ट नहीं है। तो उसमें सिर्फ एक अक्षर पर आपको ध्यान देना है, द्रव्य, गुण, पर्याय, ये तीन।